प्रिय मित्रों नमस्कार। एकेडमी फॉर एक्सीलेंस के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज 7 अक्टूबर 2015 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 6 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की फरवरी 2016 में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं वैभव जोशी नांदेड़ महाराष्ट्र से, सुधा सिंह सतना मध्य प्रदेश से, सुनील कुमार यादव लखनऊ से, मधु कुमार दिल्ली से, सत्येंद्र पटेल सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश से और भास्कर अंबाजी राजे मुंबई से। वैभव, सुधा, सुनील, मधु, सत्येंद्र और भास्कर आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों जैसा कि मैंने कल विस्तार से बताया था कि हमारी एकेडमी की पूरी टीम और वे भी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत प्रतिष्ठित ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो आपसे क्लास में मुलाकात करेंगे, आप लोगों से बातें करेंगे, गवर्नमेंट के सिस्टम की फंक्शनिंग की जो प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, जो इनसाइड बातें होती हैं वो आप लोगों से शेयर करेंगे। वे भी आप लोगों के आने की बड़ी व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। मित्रों उसका कारण ये है कि पिछले 2 बैच ने यहाँ जिस तरह की प्रतिष्ठा अर्जित की है एकेडमी की क्लासेस को इतने अनुशासन के साथ अटेंड करते हुए, तो निश्चित रूप से उससे जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्हें एक ऐसा मौका मिलता है देखने का भी और अपनी बातों को बताने का भी जहां वे आप लोगों के सामने अपने विचारों को रखते हैं। कल ही मेरी कुछ ऐसे मित्रों से बात हुई, दोस्तों से बात हुई, उन्होंने बहुत खुशी खुशी अपनी स्वीकृति दी और उन्होंने कहा कि बस हमें बहुत ही व्यग्रता से प्रतीक्षा है। तो मित्रों आप लोगों का भी हार्दिक रूप से स्वागत करने के लिए भोपाल तैयार है। फ्रेंड्स आज लाइफ मैनेजमेंट के अंतर्गत मैं थोड़े से एक डिफरेंट एंगल से आप लोगों से बात करना चाहूंगा, हालांकि वो इतना डिफरेंट भी नहीं है जिसे आप इस टाइटल से हटाकर अलग रख सकें। आप लोगों ने न्यूज भी सुनी होगी और आज का अखबार भी पढ़े होंगे, उसमें आपने पढ़ा होगा, पढ़ा ही है, होगा शब्द में हटाना चाहूंगा, कि जापान और कनाडा के 2 साइंटिस्ट को फिजिक्स का नोबेल प्राइज देने की घोषणा की गई है। उनका आविष्कार क्या है, हम बड़ी लेमैन की भाषा में बात करें, फिजिक्स के जो स्टूडेंट हैं वो मुझे माफ करेंगे इस तथ्य को बहुत ही सिंप्लीफाई करके समझाने में, उन्होंने केवल एक बात बताई है और वो ये है कि जो न्यूट्रिनो कण होते हैं, यानी कि जो सूक्ष्मतम कण होते हैं, वे कण अपने स्वरूप को हमेशा बदलते रहते हैं, मतलब उनका जो रूप है, उनका जो रंग है वो लगातार परिवर्तित होता रहता है। और उन्होंने ये सिद्ध किया है कि न्यूट्रिनो के जो कण होते हैं वो ठोस कणों के बीच में भी द्रव्यमान विद्यमान रहता है, मौजूद रहता है, यानी लिक्विडिटी मौजूद रहती है। मित्रों ये बड़ी जबरदस्त खोज है और न्यूज में आपने सुना कि इस खोज के बाद अब तो पूरे के पूरे ब्रह्मांड को समझने की जो दृष्टि है वो बदल जाएगी। आपको बहुत अच्छे से मालूम है, ये तो बहुत ही सामान्य सा विज्ञान है, कि सबसे पहले जब एटम की खोज की गई थी तो उसे पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण कहा गया था। इसके बाद न्यूट्रिनो की बात आई, उसको पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण कहा गया। और अब तो पता नहीं क्या क्या खोज हो गई है और क्वांटम फिजिक्स में तो जो कण है उनकी बिल्कुल अलग तरीके से ही उसको परिभाषित कर दिया गया है। खैर मित्रों मुझे फिजिक्स के बारे में आपसे बात नहीं करनी है, मैं जानता हूं कि आप फिजिक्स के बारे में मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं, मैं इसे स्वीकार करता हूं और इसे अपनी सीमा भी मैं मानता हूं। लेकिन जब मुझे फिजिक्स का कोई सिद्धांत पता लगता है तो डेफिनेटली मेरी कोशिश होती है कि मैं इस सिद्धांत को कैसे जीवन पर अप्लाई करूं, क्योंकि दोस्तों मैं ये मानकर चलता हूं कि जो हमारी जो जिंदगी है, हम सबकी अपनी अपनी जो जिंदगियां हैं वे बिल्कुल प्रकृति के ही बिल्कुल अपरिहार्य हिस्से हैं, अभिन्न हिस्से हैं, हम प्रकृति से तनिक भी अलग नहीं हैं। तो स्वाभाविक है कि ये जो प्रकृति है, जिस तरीके से काम करती है, जिस तरह से अपना प्रभाव डालती है, ठीक वही चीज हमारी जिंदगी के साथ भी वो करेगी। वो हमें कोई अलग से मोहलत नहीं देगी, कोई अलग से रियायत नहीं देगी। हम उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, हम उसके लिए VIP नहीं है, हम उसके लिए वैसे ही हैं जैसे कि दूसरी उसकी अपनी क्रिएशंस हैं। तो मित्रों, यहां मुझे एक बड़ी अच्छी थ्योरी मिली लाइफ के बारे में कि यदि पदार्थ के कण, जो सूक्ष्मतम कण हैं, वे हमेशा अपने आप को बदलते रहते हैं, उनका रंग बदलता रहता है, उनका स्वरूप बदलता रहता है, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं, या हमारे लिए ये कैसे संभव होना चाहिए, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कि हम न बदलें, हमारे विचार न बदलें? और यदि हम अपने विचारों को नहीं बदलते हैं, हम अपने आप को नहीं बदलते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि हम प्रकृति के उस सूक्ष्मतम कण तक में जो बदलाव होता है, उस मूलभूत सिद्धांत के विरोध में ही कहीं ना कहीं खड़े हैं? मित्रों, मुझे यह बहुत खूबसूरत इस बात में लगी, इस जो थ्योरी है, इस बात में नजर आए कि इसका मतलब है कि पूरी दुनिया निरंतर बदल रही है। हम लगातार एक लिक्विडिटी के फॉर्म में हैं, हमेशा द्रव पदार्थ के रूप में हम लगातार बहते रहते हैं। और द्रव पदार्थ की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि उसे जिस भी पात्र में डाल दिया जाता है, वह उस तरह का आकार ग्रहण कर लेता है। उसे आप लोटे में डाल दीजिए तो वो लोटे जैसा बन जाएगा, उसे आप बाल्टी में डाल दीजिए तो बाल्टी जैसा बन जाएगा, और उस एक चम्मच उसमें डाल करके निकाल लीजिए तो आपके उस चम्मच में आ जाएगा। ये जो क्षमता है, अगर साइंस के इस सिद्धांत को हम अपने जीवन पर अप्लाई कर सकें मित्रों, तो ये इतना अद्भुत सिद्धांत है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसे लोग जीवन की दौड़ में पता नहीं कितना आगे निकल जाएंगे। हमारे साथ सबसे बड़ा संकट क्या है मित्रों, आप देखिए, हम जिन फंडामेंटलिस्ट की बात करते हैं, हम जिन पोंगा पंथियों की बात करते हैं, कभी कभी उन्हें दक्षिण पंथी कह दिया जाता है, या जिन कट्टरवादियों की हम बात करते हैं, चाहे वो धर्म से जुड़े हुए हों, चाहे वो समाज से जुड़े हुए हों, चाहे वो राजनीति से जुड़े हुए, किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हों, वो करते क्या है? वो कुल मिलाकर के करते यही है कि आज से 100 साल पहले या 1000 साल पहले जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी लिख दिया गया है, जो कुछ भी बता दिया गया है, या जो कुछ भी उस समय था, उनकी कोशिश होती है कि वो सारी चीजें आज भी वैसी ही हों। जबकि सच ये है कि उनके अपने जीवन की चर्या भी बिल्कुल वैसी नहीं रह गई है। जैसे मान लीजिए कि मैं इस बात पर जिद करता हूं कि साहब, हमारे यहां की नारियों को साड़ी ही पहनना चाहिए और घूंघट ही निकालना चाहिए, यह हमारी संस्कृति रही। मान लीजिए मैं इस बात को कहता हूं, तो ठीक है, चलिए यह हमारी संस्कृति रही है, इसको आप अप्लाई कर दीजिए। लेकिन जब मैं खुद देखता हूं कि उस समय तो हमारे जो लोग थे वो कुएं का पानी पीते थे, तो मुझे भी कुएं का पानी पीना चाहिए, मुझे कम से कम नल का पानी नहीं पीना चाहिए। अगर मैं महिलाओं के लिए ये कह रहा हूं कि उन्हें साड़ी पहननी ही चाहिए, तो मुझे भी फिर पैंट नहीं पहननी चाहिए, मुझे भी फिर धोती पहनना चाहिए, या ऊपर के बदन को नंगा रखना चाहिए, जैसे देखा होगा आपने बहुत से लोग, या फिर बनियान डाल लेनी चाहिए और कंधे पर गमछा डाले रहना चाहिए। और इसी को तो मतलब कहने का मेरा ये है कि हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं लेकिन खुद वैसा नहीं करते, क्योंकि वो संभव ही नहीं है। मतलब अगर मैं वैसा नहीं कर पा रहा हूं तो ये इसलिए क्योंकि मुझे वो सुविधाजनक नहीं लगता, और सुविधाजनक इसलिए नहीं लगता क्योंकि मॉडर्न टाइम ने मेरे लिए इससे बेहतर स्थितियां प्रोवाइड कर दी हैं। तो जब मुझे स्थितियों से मोह है, मुझे स्थितियों से प्यार है, प्रेम है, तो फिर दूसरी चीजों से जो बदलनी चाहिए उनसे प्रेम क्यों नहीं है? और यदि प्रकृति का एक एक सूक्ष्मतम कण बदल रहा है मित्रों, तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं इस परिवर्तन को नहीं रोक सकता, कोई भी इस परिवर्तन को नहीं रोक सकता। अब ये बात अलग है कि उन कणों में जो बदलाव हो रहा है, उनकी जो रंगतें बदल रही हैं, नई नई चीजें बन रही हैं, वो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। भले ही दिखाई न दें, लेकिन एक वक्त तो ऐसा आएगा ही जब वो शेप लेगी, और जब वो शेप लेगी तो पता लगेगा कि हम उसके स्वागत के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि हमने अपने आप को उस तरीके से ढाला नहीं है, अपने आप को बदला नहीं है। पितरों, इस सिद्धांत को आप सच पूछे तो आप सब जो नौजवान हैं, जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, या मैं यूं कहूं कि अपने कैरियर मेकिंग के प्रोसेस में हैं, आप लोगों को सबसे बड़ी कोशिश यही करनी चाहिए कि किस तरीके से हम जो बनने जा रहे हैं उसके अनुकूल खुद को ढालें। बिना उसके वहां सफलता मिलना मुश्किल है, और यहां तक कि अगर आप अपने जीवन में आगे जाएंगे ही, और फिर हर की इच्छा होती है कि वो प्रोग्रेस करे, समाज उसे पहचाने, उसे प्रतिष्ठा मिले, तो वो कैसे संभव होगा? वो संभव समाज के विकास को रोकने से नहीं होगा, वो संभव समाज को के विकास को तेज करने से होगा, समाज को आगे ले जाने से होगा। मित्रों, कल मैंने सुषमा जी के बारे में जो आप लोगों से बात की थी, वो सच पूछे तो कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई है, और आप जोड़कर देख सकते हैं कि उनमें कितनी बड़ी क्षमता है कि जब वो बेटी के पास जा रही हैं तो फिर बेटी के साथ उन्होंने बदल लिया। वहां वो मिनिस्टर नहीं है, वहां वो मां है, एक स्नेहमयी मां है, लेकिन जब वो यूएनओ के मंच पर जाकर के बोलती हैं तो वो हिंदुस्तान की विदेश मंत्री हैं। बिल्कुल स्विच ऑफ कर दिया, वहां वो उस रूप में ढल गई जैसे कि पानी किसी भी पात्र में जाने के बाद उसके अनुकूल ढल जाता है। मित्रों, सच पूछे तो मैं उस समय ऐसी ऐसी कुछ मेरे पास मेल आते हैं जिनको पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि क्या करूं, मैं समझ में नहीं आता। जैसे मेरे पास मेल आते हैं कि सर, अगर आप ये जो न्यूज क्लिपिंग्स डालते हैं और अपना ये जो ऑडियो डालते हैं, और अगर सुबह सुबह डाल दें तो मेरे लिए बड़ी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि दिन भर मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल पाता, मैं सुबह ही सुन पाता हूं, अदरवाइज मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। ये छोटी सी बात है, लेकिन इससे आप क्वालिटी ऑफ माइंड को एनालाइज कीजिए कि जो ये कह रहा है या जो इस तरह की डिमांड रख रहा है, वो समय के अनुकूल अपने आप को बिल्कुल ढाल ही नहीं रहा है, वो ढालने को तैयार ही नहीं है। जो वो कर रहा है, मतलब जो चीज होनी चाहिए वो नहीं कर रहा है, जो चीज है दूसरे उसके हिसाब से करें, सारा जोर इस बात पर है। ऐसा जीवन में कतई संभव नहीं होता। आप नहीं कह सकते कि अगर आप एसपी बन गए डिस्ट्रिक्ट के, तो आप नहीं कह सकते कि भैया अगर ये हत्याएं होनी है, चोरी होनी है, अपराध होने हैं, तो ये दिन में हो, रात में ना हो, क्योंकि रात में मेरी बेवजह नींद हराम होती है। अगर इतने छोटे सी बात को, इतनी छोटी सी चीज को हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बताइए कि सिविल सर्वेंट बनने के बाद तो आपको पता नहीं क्या क्या मैनेज करना पड़ेगा, तो वो कैसे संभव होगा? मित्रों, इसका कारण केवल यह होता है कि हमने अपने दिमाग को इतना ठोस बना दिया है, इतना आग्नेय चट्टान बना दिया, इग्नियस रॉक्स बना दिया है, कि उसमें जरा से भी हलचल नहीं होती। ये इन बातों पर आपको विचार करना होगा, अपने व्यवहार, अपने विचारों पर सोचना शुरू कीजिए। दोस्तों, अपने खिलाफ खड़े होने की आदत डालिए। ये नहीं कि जो आदत पड़ गई है उसी आदत में ही हमको पूरी जिंदगी बितानी है, तो फिर फॉरगेट इट। अगर वही आदत पड़ी हुई है तो सिविल सर्विस तो एक नई आदत की मांग आपसे करेगी, तो फिर छोड़िए। अगर आप ढल नहीं सकते हैं, मैं ढल नहीं सकता हूं, तो मुझे इसकी कल्पना छोड़ देनी चाहिए। फिर तो मैं जीवन जी ही रहा हूं और उसी के हिसाब से जीता रहूं, मेरा जीवन कट जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं, आप सोच सकते हैं कि यदि मुझे सुबह आपके लिए ऑडियो रिकॉर्ड करना होता है, तो इसमें मुझे कितने घंटे लगते हैं? क्या ये उठता हूं और मैं रिकॉर्ड कर देता हूं, या क्या मैं कोई आप लोगों को उपदेश देता हूं या भाषण देता हूं कि कुछ भी बोल दिया जाए? न्यूज सुनना, इसके बाद उसके एनालिसिस करना, दिमाग में पॉइंट्स लाना, इसके बाद इतने अखबार पढ़ना, उन अखबारों से फिर क्लिपिंग्स निकालना, क्लिपिंग्स निकालने के बाद उन्हें अंडरलाइन करना, इसके बाद छोटे छोटे पॉइंट्स तैयार करना, इन सब में कितने घंटे लगते होंगे? तो क्या आपको लगता है कि सुबह सुबह मैं ये ऑडियो डाल दूं, ये पॉसिबल है? हाँ, आप ये काम कर सकते हैं कि एक दिन पीछे चले जाइए, आप नहीं सुन पा रहे हैं तो आप ये काम कीजिए, आज का ऑडियो कल सुन लीजिए, कल का परसों सुन लीजिए, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, तरीका इस तरीके से बता रहा हूं, इस रूप में बता रहा हूं कि यदि कोई चीज संभव नहीं हो पा रही है, इस फ्रेम में संभव नहीं हो पा रही है, तो आप अपने दिमाग को हिलाने की कोशिश कीजिए। तो हाउ इज इट पॉसिबल, इसको कैसे हम संभव करें? और आप संभव कर सकते हैं, बशर्ते कि अपने दिमाग को थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में ले जाइए, थोड़ा सा उसे तरल पदार्थ में तब्दील कर दीजिए। आप देखिए कि जिंदगी का कितना मजा आपको आएगा दोस्तों, और कठिन से कठिन और कठोर से कठोर परिस्थितियां भी आपको हिला नहीं पाएंगी, क्योंकि आपके दिमाग में वो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो लचक है कि उसके हिसाब से वो उसको लपक करके अपना बना लेगा, उसका हल ढूंढ लेगा। तो मित्रों, इस नोबेल प्राइज वाली थ्योरी से बस मैं आप लोगों से ये अर्ज करना चाहूंगा कि प्लीज अपने व्यवहारों, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, अपनी सोच में, अपनी दिनचर्या में हर जगह कोशिश कीजिए कि उसमें तरलता आए। और आप जानते हैं कि तरलता में ही कोमलता होती है, छूने में कितना प्यारा लगता है, कितना मजा आता है मित्रों। इसी के साथ ही अब मैं आता हूं अब नेक्स्ट स्टेज पर, जो AIR न्यूज का है। मित्रों, आज मैं एक समाचार को थोड़े से अलग तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यकीन रखिए कि मेरा जो अलग तरीका भी होता है वो बिल्कुल आपके सिविल सर्विस के अनुकूल होता है, वो तरीका वही होता है जो सिविल सर्विस में आपकी मदद कर सके। दोस्तों, आपने एक खबर सुनी कि रेडियो में एक पर खबर थी कि नयनतारा सहगल, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की भांजी हैं, उन्होंने अपना अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड लौटा दिया, ये कहते हुए कि देश में असहिष्णुता बढ़ती चली जा रही है, ये कहते हुए उनके विरोध में अपना उन्होंने ये अवार्ड लौटाया है, ये खबर थी। दोस्तों, अब ये एक खबर है, और देखिए कि हम अब इस खबर का इस्तेमाल किस तरीके से अपने सिविल सर्विस में करेंगे, या ये जो खबर है ये खबर समाज में किस तरह के बदलाव, किस तरह के डिस्कशंस, किस तरह के तनाव, किस तरीके की स्थिति, वातावरण की ओर संकेत कर रही है, अब इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। और इस न्यूज को सुनने के बाद आपको क्या करना चाहिए, इस न्यूज को सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि ये सिविल सर्विस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आपको अपने आप को केवल इस न्यूज तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे एलोबरेट करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि इससे जुड़ी हुई और कौन सी घटनाएं पिछले कुछ दिनों में हुई हैं, क्या कुछ ऐसा हुआ है, और अगर हुआ है तो वो कौन कौन सी घटनाएं थी। आपके पास फिर घटनाओं का एक कलेक्शन हो जाएगा, 2, 3, 4, 5 जो भी घटनाएं हो, और उनका कलेक्शन करने के बाद फिर आप उनकी एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस कैसे करेंगे, मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में पहले भी बता चुका हूं और लगातार मैं बताता भी रहता हूं, फिर आप पॉइंट्स निकालेंगे कि क्या क्या हो रहा है, किस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं, किस तरह की सामाजिक स्थितियां डेवलप हो रही हैं, मीडिया का इसमें क्या रोल हो रहा है, किस किस तरीके की अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां हैं, अगर आपको मिलती हैं तो उनके आप पॉइंट्स नोट करें। आप देखेंगे कि आपका एक बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा वजनदार आर्टिकल तैयार हो जाएगा या टिप्पणी तैयार हो जाएगी। मित्रों, मुझे लगता है कि ये आप सबको करना चाहिए। डेफिनेटली मैं जानता हूं कि इसमें वक्त लगता है, और मित्रों अगर आपको बड़ा काम करना है तो वक्त तो लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो अब मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है कि मैं आपको वक्त को बढ़ाने का कोई तरीका बता सकूं कि ये 24 घंटे आपके लिए 26 घंटे हो जाएं, क्योंकि जिन्हें सफलता मिल रही है दुनिया में, जो कुछ भी जितना बड़ा भी काम कर रहा है वो इसी टाइम के फ्रेम में कर रहा है, राइट। अब आप देखिए कि जब हम बढ़ती असहिष्णुता की बात करते हैं, मान लीजिए कि क्या समाज में असहिष्णुता बढ़ रही है, अपने विचार व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि एक एक प्रश्न आ रहा है, आ गया है, तो अब हम कुछ घटनाओं को लेते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं कि पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है। नयनतारा सहगल जी की अभी एक एग्जाम्पल हमारे सामने है, फिर इसके ठीक कुछ समय पहले दादरी की घटना आपने देखी, कि किस तरह से एक व्यक्ति पर अटैक किया गया, परिवार पर अटैक किया गया और उसकी हत्या हो गई। इसके बाद फिर एक सांप्रदायिक तनाव जैसी स्थिति बनी, वो दूसरी घटना है। इसके बाद आप फिर चले जाइए कि एक जो कर्नाटक के जो साहित्यकार थे कलबर्गी, उनकी हत्या हुई। जब उनकी हत्या हुई तो उस समय बहुत से कन्नड़ लेखकों ने अपने अवार्ड वापस किए, और जब कलबर्गी जी की हत्या हुई थी तब उसी के विरोध में साहित्य एकेडमी का एक और अवार्ड हिंदी के रचनाकार ने वापस किया था, उदय प्रकाश जी ने, जो कहानीकार हैं। और मैं अभी जितने भी कहानीकार हैं उनमें से उदय प्रकाश जी को बेस्ट मानता हूं, और मैं तो उनकी कहानियों का फैन हूं, मतलब उनकी कहानियों के पीछे पागल हूं। यदि उनकी कहानियां हों और मैं न पढ़ूं ऐसा हो ही नहीं सकता। उदय प्रकाश जी ने अपना अवार्ड लौटाया, ये घटना हो गई। फिर आप देख रहे हैं कि अभी खासकर गोमांस के पर प्रतिबंध लगाने को लेकर के कहीं महाराष्ट्र में हो रहा है तो कहीं जम्मू में हाई कोर्ट कुछ डिसीजन दे रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट को उस पर वो करना पड़ रहा है, और दूसरे राज्यों में इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। तो ये चार पांच घटनाएं आपको मिल जाएंगी जो लगभग लगभग इसी तरह की हैं। अब होगा ये कि आप इनको इस्तेमाल कैसे करेंगे। देखिए घटनाएं तो होती हैं, मैं केवल आपसे अभी फिलहाल इतना ही कह सकता हूं कि यदि आप न्यूज के बारे में अलर्ट हैं और एडिटोरियल कमेंट्स पढ़ रहे हैं तो आपको इनकी एनालिसिस करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सिविल सर्विस में होता यह है फ्रेंड्स कि आप भी एनालिसिस कर रहे हैं, मैं भी एनालिसिस कर रहा हूं, मेरा फ्रेंड भी एनालिसिस कर रहा है, हम सब एनालिसिस कर रहे हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, हम किसी को 6 मिल जाएंगे, किसी को 6.5 मिल जाएंगे, किसी को 5.5 मिल जाएंगे। मान लीजिए हम सब ने ठीक ठाक एनालिसिस की। अब सवाल यह है कि इसमें आगे कौन निकलेगा, किसको थोड़ा सा अधिक मार्क्स मिल सकते हैं, कौन 7 मार्क्स ला सकता है या 7.5 मार्क्स ला सकता है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि ये सब लोग जिस तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं सही मायने में क्या आपने उससे कुछ अलग हटकर के बात कही है। और जब मैं अलग हटकर के बात कह रहा हूं फ्रेंड्स, तो इसमें दोनों ही बातें होती, क्या कुछ आपने नया कंटेंट दिया है, नए विचार व्यक्त किए हैं, और दूसरा फिर इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका जो प्रेजेंटेशन रहा है भाषा के स्तर पर, उत्तर लिखने के गठन के स्तर पर वो कितना बेहतर रहा है, वहां आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आज आपको इकोनॉमिक टाइम्स का एक बड़ा खूबसूरत आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं, नॉलेज सेंटर पर अवेलेबल है, आप देखिएगा, कम्युनलिज्म वर्सेस ग्रोथ, ये है इसका जो लेटर पार्ट है, जो इसका उत्तरार्ध का हिस्सा है, उसको मैंने अंडरलाइन किया। इसमें इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही है, खूबसूरत बात यह कही है, उन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की बात नहीं है, कलेजी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, हम इसकी बात करें, तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो एक बिल्कुल एक डिफरेंट इश्यू होता है, और जो डेमोक्रेसी है वो बिल्कुल एक डिफरेंट इश्यू होता है। जैसे इन्होंने विश्व के 3 नेताओं के नाम लिए हैं, और मैं ये चूंकि अंग्रेजी में है तो हिंदी के स्टूडेंट्स के फायदे के लिए थोड़े से डिटेल में जा रहा हूं। जैसे इन्होंने एक नाम बताया फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का, जो 1930 के आसपास पर अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उस समय अमेरिका में पूरे के पूरे विश्व में भारी आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था पूरी दुनिया में, तो उस आर्थिक मंदी से उबारने के लिए और अपने देश के आर्थिक विकास के लिए फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने जो काम किया वो ये कि नेशनल हाईवे बनाने शुरू कर दिए, जबरदस्त रूप से हाईवे बनाए, जबरदस्त रूप से बांध बनाए, और सच पूछिए तो वो अमेरिका के आर्थिक विकास का एक तरीके से फाउंडेशन बन गया। अमेरिका में जितने जबरदस्त हाईवे हैं फ्रेंड्स, आप कल्पना नहीं कर सकते कि कैसे ये सड़कें बनी हैं, लोगों को रोजगार मिलने लगा, औद्योगिक विकास होने लगा, डेफिनेटली उसका फायदा हुआ। तो ये एक मॉडल है। दूसरा मॉडल इन्होंने बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में, हिटलर के बारे में आप जानते ही हैं, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में हिटलर को पढ़ा होगा सेकेंड वर्ल्ड वार में, कि हिटलर का भी पर्पज अपने देश का विकास करना ही था, तो उसने अपना एक अलग तरीका अपनाया, यहूदियों के खिलाफ और युद्ध और इसका तरीका अपनाया। तीसरा स्टालिन जो रशिया में थे, लेनिन के बाद स्टालिन वहां आए, और उन्होंने जो तरीका अपनाया जबरदस्त रूप से रशिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू कर दिया, औद्योगिकीकरण, तेजी से औद्योगिकीकरण उन्होंने रशिया का किया ताकि वो लड़ाई में ज्यादा से ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। उन्होंने कहा है कि ये जो तीनों नेता हैं इसमें एक डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और थर्ड जो लीडर है वो कम्युनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये तीनों के तीनों नेशनल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन तीनों ने जिस सोसाइटी की रचना की वो तो सेम नहीं है, वो बिल्कुल अलग है। तो सोसाइटी एज ए होल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये बिल्कुल अलग अलग चीजें होती हैं। तो अगर समाज को बनाना है और समाज में शांति और व्यवस्था और सहिष्णुता स्थापित करनी है तो उसके लिए हमें एक बिल्कुल डिफरेंट तरीका अपनाना पड़ेगा। और इसमें इन्होंने बाद में फिर जाकर के ये भी कहा है कि याद रखें कि जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कभी भी मोरल डेवलपमेंट की गारंटी नहीं होती है। अगर टेक्नोलॉजिकली हम बहुत ज्यादा डेवलप कर गए तो यह जरूरी नहीं है कि हम चारित्रिक दृष्टि से भी बहुत आगे होंगे। अभी आपको ध्यान होगा कि लगभग एक सप्ताह पहले की ही बात है कि अमेरिका के फिर से एक स्कूल में इसी तरह की हत्याएं हुई, एक लड़का गया और शूट कर दिया, 8-9-10 लोग उसमें मारे गए, जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट को यह कहना पड़ा कि मुझे लग रहा है कि जैसे अमेरिका कुछ ज्यादा ही असहिष्णु होता जा रहा है, हम संवेदनशीलता खोते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी की दृष्टि से तो अमेरिका बहुत आगे है तो सहिष्णुता खोते जा रहे हैं। तो अगर आप संवेदनशीलता खोते चले जाएंगे तो जो समाज बनेगा वो समाज फिर बहुत ही एक तरह से कह दीजिए कि तनावपूर्ण समाज होगा। जो समाज तनावपूर्ण होगा निश्चित रूप से वो असहिष्णु समाज होगा, सहिष्णुता का अभाव होगा, फिर चाहे वहां पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेटिक ही क्यों ना हो। तो जब आप इस तथ्य को जान लेते हैं तो फिर आप देखेंगे कि आपका नजरिया इस तरह के आर्टिकल के प्रति, इस तरह के क्वेश्चंस के प्रति बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अब आपको कंटेंट मिल गया। अब मैं जहां तक समझता हूं कि इस तथ्य को जानने के बाद अब आपकी जो राइटिंग होगी उसमें एक नई चमक आ जाएगी, और उसकी एनालिसिस देखिए कि कितनी ब्रॉड हो गई, केवल अब देश तक सीमित नहीं रह गई, वो अंतर्राष्ट्रीय विश्व तक आपकी जो एनालिसिस फैल गई। तो क्या इससे एग्जामिनर को ये नहीं लगेगा कि सच में इस स्टूडेंट की समझ कितनी व्यापक है और पकड़ भी कितनी मजबूत है। और डेफिनेटली जैसे ही ये होगा तो वहां 12 नंबर में मित्रों आप 8 नंबर हासिल कर लेंगे। ये सिविल सर्विस की परीक्षा में आगे निकल जाने का एक सूत्र है, रहस्य नहीं मित्रों, रहस्य जैसा कुछ होता नहीं है। दूसरी जो खबर थी मित्रों, आंध्र प्रदेश में के विशाखापट्टनम में आपने देखा कि जो माओवादी हैं उन्होंने तेलुगु देशम के 3 नेताओं का अपहरण कर लिया है। मेरे जो फर्स्ट बैच और सेकंड बैच के स्टूडेंट रहे हैं उनको मैंने स्पेशल ऑडियो में जो पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत प्रोवाइड किया है माओवादी के बारे में मैंने डिटेल में बताया है। ये बेसिकली नक्सलवादी, माओवादी, नक्सलाइट और ये जो आतंक इस तरह की गतिविधियों में शामिल है लगभग एक ही श्रेणी के होते हैं, थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो इस न्यूज से बस केवल आपके दिमाग में ये बात रह सकती है कि आंध्र प्रदेश में जो गुट इस तरह का सक्रिय है उसे हम माओवादी के नाम से जानते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में जो सक्रिय है उन्हें हम नक्सलवादी कहते हैं। इसके बाद मित्रों जो एक छोटी सी खबर थी लेकिन किसी मायने में वो कम महत्वपूर्ण नहीं है, वो गन्ना किसानों को लेकर के है। गन्ना किसानों की समस्या बहुत लंबे समय से हिंदुस्तान में चली आ रही है। गन्ना का उत्पादन, गन्ने की खेती किसानों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं रह गई है। वो गन्ना पैदा करते हैं, चीनी मिल वालों को बेच भी देते हैं शुगर मिल्स को, इसके बाद शुगर मिल्स वाले उनके पैसों का भुगतान नहीं करते हैं। पहले तो ये होता था मित्रों कि गन्ने के खेत जला दिए जाते थे, क्योंकि अगर गन्ना काटने के बाद अगर मिल तक उसे ले जाया जाए शुगर मिल तक तो उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ही इतना हो जाता था कि गन्ना को बेचने के बाद भी उस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं निकलता था। ये स्थिति है। और आपने न्यूज में ये भी सुना कि लगभग 12,000 करोड़ रुपए किसानों के बकाया हैं। अगर आप 6 महीने पहले की न्यूज को याद करने की कोशिश करें तो सरकार ने कुछ धनराशि 4,000 करोड़ रुपए शायद मिल मालिकों को बिना ब्याज के दिया भी था ताकि वो किसानों को इसका भुगतान कर सके। तो इसके जरिए हमको एक तथ्य ये तो पता लगता है कि किस तरीके से हमारे देश में जो गन्ना उत्पादक किसान हैं वो संकट में है, यानी कि शुगर मिल भी संकट में है, यानी कि शुगर इंडस्ट्री अब फायदे का सौदा नहीं रह गया है। तो इसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी ले लेनी चाहिए। हालांकि आप ये देखेंगे कि ये जो संकट है ये उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, साउथ में नहीं है। साउथ में शुगर मिल्स लग रही हैं और वहां सब चीज ठीक ठाक चल रही है, और इसको लेकर के 2 साल पहले क्वेश्चन भी सीधे सीधे पूछा गया था कि क्यों ऐसा साउथ में है, है ना। तो ये जो चीजें होती हैं बड़ी प्रैक्टिकल आस्पेक्ट की चीजें होती हैं जो लगातार कहीं ना कहीं न्यूज में आती हैं, अखबारों में आ जाती हैं, बस हमसे गड़बड़ी ये हो जाती है कि हम उसको उसकी इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाते, उसमें हमारे हमसे चूक हो जाती है और बस ये चूक जितनी कम हो जाएगी, जितनी हमारी समझ बढ़ जाएगी, सिविल सर्विस में हमारी सफलता की संभावनाएं उतनी बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों AIR न्यूज के बारे में इतना ही। अब मैं आ रहा हूं आज के अखबारों की क्लिपिंग्स पर। फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छी क्लिपिंग्स है टाइम्स ऑफ इंडिया की, जो खासकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर है। इसमें इन्होंने जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की है, ये इंटरनेट को लेकर के बात की, जिसे आप सोशल मीडिया कह सकते हैं। आपको मालूम है कि जो सेक्शन 66A है, जिसको लेकर के मैंने अपने फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के स्टूडेंट्स को स्पेशल ऑडियो भी प्रोवाइड किया है, उसको तो मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया कि नहीं, इसको लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये लोगों के जो राइट टू नो, जो जानने का जो अधिकार है, उसके खिलाफ है। तो 66A को तो उन्होंने रोक दिया है। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें इन्होंने आर्टिकल में लिखा है कि लगातार जो सत्ता होती है, जो सरकार होती है, वो किसी न किसी तरीके से इन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करती है। फिर से जैसे कि मैंने आपको असहिष्णुता की कुछ घटनाएं जो अभी देश में हो रही हैं, जिसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसके बारे में बताया, ठीक इसी तरह से इन्होंने जो सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की जो कोशिशें हो रही हैं, उन कुछ घटनाओं की चर्चा की है। और इनको जान लेना बहुत खूबसूरत होता है मित्रों। जैसे इन्होंने बताया कि कुछ दिनों पहले ही नेशनल इंक्रिप्शन पॉलिसी आने वाली थी, है ना, हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी, जिसके तहत ये प्रोविजन किया जा रहा था कि आप किसी भी माध्यम से जब किसी से बात करेंगे, चाहे वो आपका व्हाट्सएप हो, चाहे वो SMS हो, तो आपको 90 दिन तक उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। ये सरकार करने जा रही थी, लेकिन जब इसका विरोध हुआ तो सरकार ने इसे वापस ले लिया, ये ड्राफ्ट के फॉर्म में था। फिर उन्होंने एक और उदाहरण दिया कि कुछ पोर्न साइट को, लगभग 857 पोर्न साइट, जो अश्लील जो साइट्स होती हैं, उनको प्रतिबंधित कर दिया गया था, उसके खिलाफ भी आवाज उठी, तो फिर सरकार ने उसे ओपन किया। इसी तरह से उन्होंने बताया कि अभी जो हार्दिक पटेल के नेतृत्व में आरक्षण के आंदोलन के लिए पाटीदार जो आगे आए थे, उस समय भी गुजरात सरकार ने एक ही महीने में 2 बार इंटरनेट पर बैन लगाया। ठीक इसी तरह से एक इन्होंने उदाहरण दिया है कि सितंबर में लॉस एंजलिस में जो टाइम्स ग्रुप के जो रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया कि उन्होंने एक इंटरव्यू लिया था संजीव भट्ट का, जो गुजरात के, आपको ध्यान होगा, IPS ऑफिसर थे, तो उसको भी उन्होंने बैन किया, उसको हटा दिया। तो इस तरह से उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो सरकारें हैं, सत्ता हैं, लगातार इस कोशिश में होती हैं कि इस सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल में किया जा सके, क्योंकि उन्होंने बहुत एक दो उदाहरण भी दिए हैं कि जो एक जैस्मिन रिवॉल्यूशन हुआ था मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व देशों में जो आंदोलन हुआ था, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, सोशल मीडिया का योगदान रहा है। और भारत में भी जो करप्शन के अगेंस्ट जो एक आंदोलन सा चला, उसमें भी सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो मैं समझता हूं कि ये इन्होंने टोटल लेकर के एक अच्छी बात कही है। मैं चाहूंगा कि इसे आप सब समझने और पढ़ने की कोशिश करें। वैसे बहुत जो मेजर चीजें थी वो हिंदी के स्टूडेंट्स की सुविधा की दृष्टि से मैंने आप लोगों को बता दी है। और मित्रों, जो दूसरे आर्टिकल्स हैं वो नॉलेज सेंटर पर अवेलेबल होंगे ही, वो सब आप लोग देख लेंगे, उनकी चर्चा में अलग से करने का वक्त नहीं निकाल पा रहा हूं। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं ईमेल पर। एक मेल आया है सनोज कुमार का, जो इंदौर से अभी अक्टूबर की क्लास में आ रहे हैं। इन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया है, जो भी स्टूडेंट्स उनसे संपर्क करना चाहें, जो क्लास में आने वाले हों, वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। सनोज कुमार का मोबाइल नंबर है 8827077839। इसके बाद जो मेल है, रजत आपने लिखा है, आपने जो खासकर कल मैंने जो बात कही थी कि अमेरिका का जो फेडरल बैंक है, वो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ा रहा है, तो इसकी वजह से शेयर मार्केट में क्यों तेजी आई। आपका विश्लेषण बिल्कुल सही है, आपने सही विश्लेषण किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ईश्वर से प्रार्थना है कि आपकी जो एनालिसिस है, इसी तरह से बिल्कुल राइट ट्रैक पर चलता रहे। राजेश श्रीमाल, आपने निबंध के बारे में पूछा है कि क्या मुझे उसके पक्ष में भी लिखना चाहिए और विपक्ष में भी, दोनों तरफ लिखना चाहिए। एक बार आपको मैं सलाह दूंगा कि फिर से ध्यान से निबंध को पढ़िए कि निबंध आपसे क्या कह रहा है। मुझे लगता है कि आपको खुद उसका उत्तर मिल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि निबंध बहुत स्पष्ट रूप से आपको निर्देश दे रहा है कि मेरी ये जरूरत है। थोड़ा सा उसके साथ मेहनत कीजिए, मुझे लगता है कि आपको सफलता मिल जाएगी। तो मित्रों, सभी ईमेल लिखने वालों को बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। इनमें से कुछ के नाम हैं: भरत कुमार भिवानी से, सारांश गुप्ता झांसी से, रितेश, राजगौरव गरखा बिहार से, अभिषेक तिवारी, और हरीश जालोर राजस्थान से। आप सभी श्रोताओं का जो इस ऑडियो को सुन रहे हैं उन सबके प्रति अंत में आभार व्यक्त करते हुए आप सबसे अब इजाजत चाहूंगा। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।